मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 24 मई 2018 है और आज के इस afias.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं जान रहा हूं और सच पूछे तो उसे महसूस भी कर रहा हूं कि अब जबकि आपके सिविल सर्विस प्री के एग्जामिनेशन के बहुत ही थोड़े से दिन बचे हैं, 1.5 सप्ताह, तो आपका जो डाइवर्शन है वो डेफिनेटली मैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की ओर ले जा रहा हूं इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन इसका एक उपाय है क्योंकि आपका जो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन है वो अभी प्री एग्जामिनेशन पर है और वह होना भी चाहिए। लेकिन मैंने एक नीति अपनाई कि नहीं, इस समय का इस्तेमाल इसके लिए किया जाए, तो मैं आपको एक उपाय बता सकता हूं कि अगर आप बहुत ध्यान से अभी इस तरह के विषय को सुनने में रुचि नहीं दिखा पा रहे हैं तो एक काम आप कर सकते हैं, और मित्रों वह काम यह है कि ये जितने भी एपिसोड जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित हैं और जिनकी शुरुआत 21 मई के एपिसोड से हो चुकी है, और हम इस विषय को अभी लेकर के चलेंगे, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगले सप्ताह तक हम इसी विषय के अलग अलग मुद्दों पर बातें करेंगे, तो इन्हें आप अभी अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं या डेट नोट कर लीजिए क्योंकि वहां वेबसाइट पर तो ये अवेलेबल होते हैं, जैसा भी आप चाहें। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इन्हें आप मिस बिल्कुल ना करें, क्योंकि देखिए प्री आप क्वालिफाई करेंगे, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप प्री क्वालिफाई करें। प्री क्वालिफाई करने के बाद जो मुख्य लड़ाई है वो तो मेंस में है और मैं आपको मेंस के लिए तैयार कर रहा हूं। सच पूछे तो अभी मैं जितनी भी बातें कर रहा हूं उसका आपके प्री एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन से कोई संबंध नहीं है, इसका पूरा संबंध आपके मेंस से है और इंटरव्यू से है। तो इस ये जानते हुए भी कि अभी आपका ध्यान इधर नहीं होगा, मैं जानबूझ करके इसे समझते हुए भी इस विषय पर बातें कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगा कि ठीक है इस समय का इसी तरह से हम उपयोग करते हैं, आगे ढंग से उपयोग करेंगे तो आप एक नीति इस तरह की बना सकते हैं, राइट। आज मैं आपसे थोड़ी सी बात इस बारे में करने जा रहा हूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो पेपर होता है इसे ज्यादातर स्टूडेंट बहुत उबाऊ पाते हैं, और अगर वो उबाऊ पाते हैं तो इनफैक्ट मुझे नहीं लगता कि वो कोई उस विषय के साथ अन्याय कर रहे हैं और ये भी नहीं लगता कि विषय कोई इनके साथ अन्याय कर रहा है। सच में उबाऊ है भी, उबाऊ इस मायने में है कि अब इसमें इतनी ढेर सारी चीजें, तो हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि इसकी चुनौतियां कुछ ऐसी हैं, इसके चैलेंजेस कुछ ऐसे हैं कि वो स्टूडेंट के पल्ले थोड़ा सा कम पड़ता है और अच्छों के पल्ले कम पड़ता है। देखिए हम भारत में रह रहे हैं, भारत के संविधान को बहुत अच्छे से जानते हैं, भारतीय राजनीति को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो हम भारत की चीजों को तो अच्छे से समझ लेते हैं, भारत के इतिहास को जानते हैं। देखिए पॉलिटिक्स और इन सबको समझने के लिए भारतीय इतिहास, भारतीय समाज को भी जानना जरूरी है, तो और वो हम जानते हैं, यहां तक कि हम बिना पढ़े ही जानते हैं, सुन सुन करके जान लेते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में तो हमारे पास ऐसी कोई संभावना नहीं होती, कोई गुंजाइश नहीं होती, तो अब हम कैसे जाने? तो इसलिए यह विषय अक्सर उबाऊ लगने लगता है। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं आपको इंश्योर करना चाहूंगा मित्रों, इंश्योर इस रूप में करना चाह रहा हूं कि है बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। अब कोई चीज उबाऊ क्यों लगती है, कोई इन चीज इंटरेस्टिंग क्यों लगती है, इसका बड़ा सिंपल सा उत्तर है कि जो चीज हमारी समझ में आ जाती है, जो हमारी पकड़ में होती है, वो हमें सरल लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है, और जो चीज हमारी पकड़ से परे होती है, हमें समझ में दुरूह लगती है, उलझाव वाली लगती है, तो बट नेचुरली कि वो चीज कठिन हो जाती है, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के पेपर के साथ ऐसा है, विषय के साथ ऐसा है। तो मित्रों यहां मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से यह विषय उबाऊ लगता है, उलझाने वाला लगता है, क्योंकि मेरा यह मानना है कि अगर आपने उन कारणों को एक बार समझ लिया, पकड़ लिया, तो फिर उन कारणों को दूर करने के उपाय तो पता लग जाएंगे। जो सबसे बड़ा संकट होता है, जानते हैं कि डायग्नोस कर पाना है कि संकट होता है कि भैया इसको बीमारी है क्या, और जब बीमारी का सही पता लग जाता है तो दवाइयां तो हैं। तो इस दृष्टि से मैंने सोचा कि नहीं, इसके जो संकट हैं उसके बारे में भी मुझे एक एपिसोड में बात करनी चाहिए। तो मित्रों, मैं उसी तरह के कुछ संकट के बारे में आपसे बातें करने जा रहा हूं। देखिए, इसका जो पहला चैलेंज है वो ये क्या है, ये है कि ये जो विषय है, हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जैसा कि मैंने इससे पहले वाले एपिसोड में कहा, बेसिकली ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी कूटनीति है, राजनयिकता है। राजनयिकता इसका बड़ा सॉफ्ट वर्ड है, सही वर्ड है कूटनीति। कूटनीति का मतलब क्या होता है? देखिए, राजनीति का मतलब है राज्य की नीति, और नीति का मतलब होती है एक अच्छी चीज जिसको आधार बना करके आप कुछ काम करते हैं। चलिए, नीति तो अच्छी भी है तो बुरी भी हो सकती है, चलिए हम एक बार मान देते हैं। तो जब उसमें कूट शब्द शामिल हो जाता है तो कूट का मतलब यह हो जाता है कि वो बहुत स्पष्ट नहीं है, वो बहुत उलझाव वाली चीज हो गई है, बहुत उलझाव वाली चीज है। हम एक्सेप्ट ही कर रहे हैं कि भैया ये उलझाव वाली चीज है, ये साफ साफ नहीं है, सरल सर नहीं है। साफ सरल नहीं है का मतलब क्या है कि ये पहेली है। अब पहेली भी होता क्या है, कहा तो जा रहा है लेकिन साफ साफ नहीं कहा जा रहा है, बात को हेर फेर के साथ कहा जा रहा है, हेरा फेरी के साथ कहा जा रहा है। अगर आप में क्षमता है तो आप समझ लीजिए, और अगर क्षमता नहीं है तो आप उसमें उलझ जाइए। तो जो राजनीति, जो इंटरनेशनल रिलेशन की जो भाषा होती है और घटनाओं के जो विश्लेषण होते हैं वो कूटनीतिक किस्म के होते हैं, या आप इसे बड़े दूसरे शब्दों में और सरल अंदाज में कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। निगाह तो कहीं पर टिकी हुई है और पता लगा कि निशाना आप किसी को बना रहे हैं, निशाना आपने कहीं पर लगा दिया। तो अब इसको भांप पाना बड़ा मुश्किल होता है कि अगर किसी देश ने कोई नीति बनाई है या किसी के खिलाफ कोई बयान दे दिया है या कोई कदम उठा लिया है तो यह समझ पाना मुश्किल होता है कि उसने ऐसा किया क्यों। बड़ों का सिर चकरा जाता है कि यार ये क्या हो गया, इसने किया क्यों, और जिसने किया है वो तो जानता है कि उसने क्यों किया। अब यह बात अलग है कि उसने जिस चीज के लिए जो सोचकर किया था वो सब चीजें उसी रूप में हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन इसने किया बहुत सोच समझ करके है। इसको समझ पाना बहुत मुश्किल होता है मित्रों, इसीलिए जो इंटरनेशनल रिलेशन के जो इवेंट्स होते हैं वो बहुत उलझाव वाले हो जाते हैं। अब आप देखिए कि जो उलझाव वाली चीजें होंगी वो आसानी से समझ में तो नहीं आती हैं, बस आपको भी समझ में नहीं आती हैं, उस विषय के प्रति आपकी अरुचि पैदा हो जाती है। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है, उसकी जो भाषा ही है वो कुछ कूटनीति की भाषा है। अब आप देखिए कि दूसरी क्या चीज होती है। अब जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो यार 200 देश हैं, 200। हमसे एक देश की पॉलिटिक्स को समझने में मुश्किल होती, समझ नहीं आती, संभाले नहीं संभल रहा है, और यहां हम 200 देश की बात कर रहे हैं। अब आप देखिए कि इस 200 देश की बातों में नो डाउट कि हमारी सुविधा के लिए यूपीएससी ने कह दिया कि जिससे भारत जुड़ा हुआ हो, लेकिन अभी ग्लोबलाइजेशन का दौर कुछ ऐसा विचित्र हो गया है कि ऐसा लगता है कि एक पूरा का पूरा पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर एक जाल बिछा हुआ है और उस जाल में एक धागा हमारा भी है। तो दुनिया में जहां जो कुछ भी हो रहा है हमारा वाला धागा भी थोड़ा सा हिल ही जाता है। अब आपको सतर्क बस यहां केवल यह रहना है कि थोड़े मोड़े हिलने को आप इंपॉर्टेंट न माने। जब धागा ज्यादा हिले, ज्यादा तनाव वाला में आ जाए या टूटने के करीब आ जाए, तब आप समझें कि नहीं नहीं यार अब ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तो अब हमें सतर्क होना पड़ेगा। तो अब इतने सारे दुनिया के देश और दुनिया में के देशों में घटने वाली इतनी सारी घटनाएं, अखबारों का पूरा पृष्ठ आप देखेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन से भरा ही होता है, नहीं तो आधा पेज तो भरा ही होता है। और उसमें भी दिक्कत ये होती है कि अपने देश की घटनाओं के बारे में तो चलिए हम थोड़ा सा छांट मिले कि ये महत्वपूर्ण है ये बेकार है, लेकिन दुनिया के बारे में तो छांटना मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी ये होता है कि अभी तो ये बहुत छोटा सा लग रहा था, पता लगा कि कुछ दिनों के बाद वो बहुत बड़ा हो गया। तो स्टूडेंट को इससे बड़ी दिक्कत महसूस होती है, वो एक बार फिर से पशुपेश में फंस जाता है, उसको रास्ता दिखाई नहीं देता, उसको लगता है जैसे कि वो किसी बियावान घनघोर अंधेरे जंगल में फंस गया है, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए खासकर दोस्तों जो इंटरनेशनल रिलेशन का जो टॉपिक होता है उसके लिए मुझे लगता है कि गाइडेंस की थोड़ी सी जरूरत हो जाती है, वो स्टूडेंट्स की अपनी पकड़ से थोड़ी सी बाहर की बात हो जाती है। जैसे इकोनॉमिक्स के लिए गाइडेंस की जरूरत होती है, कुछ वैसी स्थिति मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस की भी मालूम पड़ती है। फिर आप देखिए क्या होता है कि अब का जो समय हो गया है वो तो बहुत ही फास्ट मूविंग का है, भारत की राजनीति में ही कितनी तेजी से परिवर्तन होते चले जाते हैं और फिर हम दुनिया की राजनीति में परिवर्तन की बात कर रहे हैं। इतना फास्ट मूविंग वर्ल्ड हो गया है, बहुत तेजी के साथ बदलाव हो रहे हैं। अब आपको उन बदलावों के साथ तालमेल, कदम ताल करना है, अपने कदम मिला करके चलने हैं। क्या हम ऐसी स्थिति में होते हैं? एक स्टूडेंट जो 22, 23, 24, 25 साल का है, वो नहीं होता है स्टूडेंट में। तो जब वो पिछड़ जाता है, कोई चीज उसके हाथ से छूट जाती है, तो उसको अफसोस होता है। और सच पूछे तो अफसोस तो चलिए होता है, वो अच्छी बात है, लेकिन वो जो लिंक टूट गया है वो फिर दिक्कत पैदा कर देता है। फिर उसे आज की चीज समझ में नहीं आ रही है क्योंकि पीछे की चीज उससे छूट गई थी। तो मित्रों, इससे मुश्किल हो जाती है। चलिए, जो इवेंट होते हैं वो तो होते ही होते हैं। हो क्या रहा है कि फिर पता लगा कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं लगातार जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनमें भी तो चेंजेस हो रहे हैं, उनमें भी चेंजेस हो रहे हैं। जैसे अमेरिका में, अब चलिए हम अमेरिका के उदाहरण से इसे समझते हैं कि अमेरिका में जब बराक ओबामा साहब प्रेसिडेंट थे तब अमेरिका की नीति कुछ दूसरी थी, भारत और अमेरिका के संबंध कुछ दूसरे तरीके के थे, ज्यादा दोस्ताना संबंध थे। इसके बाद ट्रंप साहब आ गए। अब देखिए, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन वही है, अमेरिका कंट्री भी वही है, अमेरिका की विदेश नीति भी लगभग लगभग वही सी है। लेकिन अब चूंकि पॉलिटिकल लीडरशिप में बदलाव हो गया है, तो ये पॉलिटिकल लीडरशिप का बदलाव डेफिनेटली इंटरनेशनल रिलेशन में भी बदलाव लाएगा, वहां की नीतियों में भी बदलाव लाएगा। तो अब आप महसूस कर रहे होंगे कि ट्रंप साहब जो नीतियां लेकर के चल रहे हैं दुनिया के बारे में, तो लोगों को चौंका रहा है, वो चौंका रही है वो नीतियां। उसके लपेटे में भारत भी आ रहा है। अभी अभी आप देख लीजिए ईरान के मामले को लेकर के कि किस तरीके से उन्होंने एक तरफा घोषणा कर दी, पूरी दुनिया चकित है कि ये क्या हो रहा है। उनका उत्तरी कोरिया के साथ कितना जबरदस्त तनाव का वातावरण बना रहा, अब जाकर के थोड़ी सी संतुष्टि मिली है कि देखो भैया की चीजें संभल जाए। प्रशांत क्षेत्र के पार्टनरशिप वाली जो संधि थी उसमें उन्होंने कह दिया कि हम अलग हो रहे हैं, नाटो के बारे में भी कुछ इस तरह का वक्तव्य दे दिया। तो पता नहीं क्या क्या वो इस तरह की बातें बीच बीच में कर देते हैं और दुनिया चकित हो जाती है। पेरिस में जो जलवायु सम्मेलन हो रहा था उसी को उन्होंने कह दिया कि इससे हमारे देश का बहुत नुकसान हो रहा है, अमेरिका का, हम इसे नहीं मानते। लीजिए भैया, पहले वाले आपके राष्ट्रपति ने समझौता किया है, वो इसमें शामिल हो रहे हैं आपके ईरान डील में, और आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम इससे अलग हो रहे हैं। तो इस तरह से जब पॉलिटिकल लीडरशिप बदलती है तो इंटरनेशनल रिलेशंस के शेड भी बदल जाते हैं। अब आपको उसे भी पकड़ना होता है। और एक जैसे ही एक पॉलिटिकल लीडरशिप बदलती है तो पूरे की पूरी दुनिया के इक्वेशंस बदलने लगते हैं। देखिए कैसे इक्वेशंस बदल गए ट्रंप साहब के आते ही। इससे पहले अमेरिका को विश्व नेता माना जाता था, वर्ल्ड लीडर माना जाता था, लेकिन आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे अब उसमें कमी आती जा रही है। अब जब आप वैश्विक मामलों से अपने आप को विड्रा करते चले जाएंगे और आपको लगेगा कि नहीं अमेरिका तो सिर्फ अमेरिकियों के लिए है, तो स्वाभाविक है कि फिर आपको नेता कौन मानेगा, फिर अमेरिका के लोग ही आपको नेता मानेंगे। और ट्रंप जी के साथ यही हो रहा है। तो इससे फिर इक्वेशंस बदलते चले जाएंगे ना। अब यूरोपीय समुदाय से ब्रिटेन अलग हो गया तो इक्वेशंस बदल गए, राइट। चूंकि अब अमेरिका किनारे हो रहा है तो जगह खाली हो रही है, स्पेस बन रहा है, तो चीन को लग रहा है कि यार ये बड़ा अच्छा मौका है, अमेरिका जिस कुर्सी को खाली कर रहा है उस पर अब हम बैठ जाएं। तो इस तरीके से दुनिया के जो समीकरण है वो बदलने लगते हैं, और उन समीकरण पर भी आपको ध्यान रहना चाहिए। और वो समीकरण इतने सूक्ष्म तरीके से बदलते हैं कि उस सूक्ष्मता को पकड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मित्रों, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है जिसकी वजह से इंटरनेशनल रिलेशन थोड़ा सा कठिन लगने लगता है। मैं चैलेंजेस की बात कर रहा हूं। और देखिए, फिर यह है कि दुनिया के इतने सारे देश हैं, उन देशों की पृष्ठभूमि तो हमको नहीं मालूम है ना। हम मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में हम कितना पढ़ लेंगे। तो चूंकि दुनिया की पृष्ठभूमि हमें नहीं मालूम है, उन देशों की पृष्ठभूमि नहीं मालूम है, और हर देश की जो विदेश नीति होती है वो डेफिनेटली उनकी अपनी पृष्ठभूमि के संदर्भों में होती है, उनके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक संदर्भों में कहीं की भी विदेश नीति का निर्धारण होता है। तो जिसने उनकी विदेश नीति का निर्धारण किया है हमको उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो हम अनुमान कैसे लगा सकते हैं कि अगर भारत ने उसके खिलाफ ये किया या उसके समर्थन में ये किया तो भारत को इसके बदले में क्या मिलेगा, उसका अनुमान लगाना आसान नहीं होता है। आसान होता है जब आप इंडियन फॉरेन सर्विस में आ जाएंगे तो आपको ट्रेंड किया जाएगा, तब आप यही तो काम करेंगे, तब तो आप डिप्लोमेट बनेंगे ना, तब आप समझेंगे इनको। तो जिस चीज को आप उस समय समझेंगे उसको अभी तो आप उतने नहीं समझ रहे हैं। तो ये मित्रों इसके कुछ चैलेंजेस हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने जो आपके सामने चैलेंजेस अभी रखे हैं, आप मत समझिएगा कि इनका निदान नहीं है। अब हम क्या करें, अरे बाप रे, अगर इसके निदान नहीं होते तो फिर मुझे इस विषय को उठाने की जरूरत ही नहीं थी। इसके निदान हैं, इसके भी उपाय हैं, और हम अब इसके उपाय पर आएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। और यहीं पर बात आती है कि तो फिर हम पढ़ाई करें कैसे, इंटरनेशनल रिलेशन को तैयार कैसे करें। तो मित्रों आगे चल करके हम लोग इस पर भी बातें करेंगे। आज अब समय हो चुका है, तो आप सबसे मैं आज के लिए अब इजाजत चाहूंगा, मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।